ಭವಿನಃ ಕ್ಷಣೇನ. ದೇಹಂ ವಿಹಾಯ ಪರಮಾತ್ಮ ದಶಾಂ ವ್ರಜಂತಿ. ತೀವ್ರಾನಲಾದುಪಲಭಾವಮಪಾಸ್ಯ ಲೋಕೆ. ಚಾಮೀಕರತ್ವಮಚಿರಾದಿವಧಾತು ಭೇದಾಃ. ಈ ಸಾರೆ ಶ್ಲೋಕ ಜೊ ಹೇ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಸೆ ಜುಡೆ ಹುವೆ ಹೈನ್. ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्वतंत्र चल रहे हों. जैसे क्रोध की बात की थी, कैसे नष्ट कर दिया उस क्रोध को. क्रोध को पहले नष्ट किया, फिर बाकी कर्मों को कैसे नष्ट किया, तो ठंडक से नष्ट किया. फिर यहां पर आगे क्या कह रहे हैं कि क्रोध और बाकी कर्मों को, घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले आप परमात्मा हो गए. और परमात्मा होने के बाद आपके परमात्मा रूप का योगी लोग ध्यान करने लगे. और योगी लोग कहां ध्यान करते थे, अपने हृदय के भीतर. इधर उधर बाहर ध्यान नहीं करते थे, अपने हृदय के भीतर. और उस आपके ध्यान से क्या होता था, तो संसारी होते हुए भी विक्षण मात्र में सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते थे. फिर दृष्टांत भी उसके बड़े सुंदर दिए हैं. जैसे कच्ची धातु है, अग्नि के संपर्क से शुद्ध धातु रूप परिणत हो जाती है, उसी प्रकार संसारी जीव कच्ची धातु के समान है. और अग्नि का समागम क्या है, आपका ध्यान. और उस ध्यान से वो अशुद्धियां दूर हो जाती है, कर्म नोकर्म चले जाते हैं और सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है. शुद्ध स्वर्ण जैसी अवस्था होती है आत्मा की, सिद्ध दशा. और कमलगट्टे की जो बात थी, तो कमलगट्टे की माला का उल्लेख आता है उपासक अध्ययन ग्रंथ में कि वो बड़ी माला जरूर होती है, लेकिन फिर भी माला फेरने के हिसाब से बहुत अच्छी माला मानी जाती. कांच की माला, चीनी मिट्टी की माला और दूसरे सिंथेटिक पदार्थों की जो माला होती है, बनावटी मोतियों की माला और अन्य भी कई ऐसे पदार्थ आते हैं आजकल, नकली मालाएं जो रहती है ना, उन मालाओं को छूना भी नहीं चाहिए. कांच और प्लास्टिक वगैरह की जो मालाएं होती है वो स्पर्श के योग्य भी नहीं होती. मंदिर के अंदर रखना तो बहुत दूर की बात और फिर जाप करना तो और दूर की बात. मालाएं एकदम शुद्ध होनी चाहिए, या तो सूत की माला जो सहजता से उपलब्ध हो सकती है. लेकिन जब अपन कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, सूत की माला अगर बाकी मालाएं आपके लिए सुलभ न हो तो बहुत अच्छी बात है. पर यदि आपके पास परिस्थिति आपका साथ देती हो तो फिर कोई ना कोई अच्छी और ऊंची वाली माला अवश्य होनी चाहिए. जैसे चश्मे के लिए लोग 1,000 रुपए के चश्मे बनवाते हैं, तो चश्मा ज्यादा बड़ा है या माला बड़ी है. अब फिर आप कहोगे कि चोरी का डर है. अरे चोरी का कैसे डर है, और दुनिया की चीजें उनकी चोरी का डर नहीं है क्या? हो जाएगी चोरी तो हो जाने दो, नहीं बनवा लेना, क्या दिक्कत है उसमें, ये तो चलता ही रहता है दुनिया में. और फिर वो कर्ज लेना और देना, यही तो है संसार. तो कोई अच्छी माला अपने पास होनी चाहिए खुद अपने फेरने के लिए. आप आज किसी माला से फेरते हैं, जाप करते हैं, कल कोई दूसरी माला उठा लेते हैं, परसों कोई तीसरी माला उठा लेते हैं. ये क्रम नहीं है जाप का. जिनके जाप का नियम होता है उनको एक ही माला से जाप करनी चाहिए. जाप बदलना उचित नहीं होता. एक अनुष्ठान जब तक 21,000 आप पूर्ण नहीं करते तब तक आप माला बदल नहीं सकते. और आसन, जैसे जिस आसन पर बैठ करके आप माला फेर रहे हैं तो उसी आसन पर बैठकर आपको माला फेरनी चाहिए. स्थान भी नहीं बदलना चाहिए. परिस्थिति की बात अलग है. कभी किसी कारणवश कहीं आप बाहर चले गए, अब क्या करोगे? 5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, माला बंद, नहीं, वहां भी माला फेरिए आप. और फिर कभी कुछ ऐसे समय आते हैं जब अशुद्धि का काल है या सौर सूतक का समय है और माला का नियम चल रहा है, तो क्या करना पड़ता है मालूम है? उसकी विधि ये है कि उतने देर से 10 दिन के लिए आपने मालाएं नहीं फेरी है, क्योंकि माला टच नहीं कर सकते उस समय. सूतक लग गया, आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो गया या फिर कुछ ऐसी घटना हुई, तो फिर उतने दिनों तक आप माला नहीं छुएंगे. लेकिन उसके बाद जितने दिन आएंगे उन दिनों में वो 10 दिनों की माला पूर्ण कर लेंगे आप, यानी आगे के जो 10 दिन आएंगे उस समय आप 2-2 माला करेंगे। जैसे आज 1 माला करते हो तो फिर उस उन दिनों में आप 2-2 माला करेंगे, अगर 2 करते हो तो 4-4 करेंगे, और जितना हिसाब जैसे आपकी अनुकूलता हो उस हिसाब से आपको पूर्ण करना पड़ेगा, ऐसा क्रम रहता है उसका। तो इसलिए मालाओं के बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में अच्छी मालाएं रख सकते हैं आप, स्फटिक की मालाएं हैं, चंदन की मालाएं तो अभी अपन जानते नहीं इसके बारे में विशेष कि जैन शास्त्रों में इसका विधान है कि नहीं है, कुछ अपन कह नहीं सकते। बाकी चंदन भी एक अच्छा शुद्ध पदार्थ है, पर काष्ठ माला के बारे में कहीं थोड़ा सा एक मतभेद है, कहीं कहीं पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि लकड़ियों की माला नहीं फेरना चाहिए। तो अब उस मत के अनुसार मत फेरो, लेकिन कहीं जहां पर ऐसा विधान है तो जैसे मूंगे की माला है, मूंगा भी एक प्रकार का काष्ठ है, आयुर्वेद ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि प्रवाल जो है, प्रवाल एक लाल रंग का रत्न होता है, अंगूठी में लगाते हैं, मंगल का रत्न बोलते हैं उसको, मूंगा कोरल बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, संस्कृत भाषा में विद्रुम मणि बोलते हैं, विद्रुम, तो वो भी एक काष्ठ रत्न है, तो उसकी माला भी फेरी जाती है। जिसके लिए जो प्रकृति के अनुकूल हो और फिर आपकी पत्रिका आदि के माध्यम से जो बात आपके अनुकूल बैठती हो काल की अपेक्षा से, तो वो माला फेरी जा सकती है। रत्न मालाएं हैं, रजत माला है, स्वर्ण माला है, और ये अक्ष माला, अक्ष की चर्चा चली थी इसलिए हमने मालाओं की बात उठाई यहाँ पर। अक्ष माला यानी कमल गट्टों की माला, छोटे वाले कमल गट्टे भी होते हैं, नील कमल के जो बीज होते हैं, हरिद्वार में मिलते हैं और इंदौर में भी उपलब्ध है वो, छोटे वाले जो कमल गट्टे रहते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे दाने रहते हैं, लेकिन उसके बारे में कहते हैं कि गृहस्थों को न फेरना चाहिए, मोक्षार्थी या फिर साधना करने वालों को वो माला फेरनी चाहिए। बड़ी कमल गट्टे की माला जो है उसके लिए उपासक अध्ययन में लिखा है कि श्रावक फेर सकते हैं, और हाथों पर भी जाप दी जा सकती है। पर कुछ लोगों का ये मत है कि जो राग द्वेष में जीने वाले गृहस्थ लोग हैं उनको माला लेकर के करना ज़्यादा अच्छा है, और जो त्यागी व्रति हैं वो हाथ से करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मना किसी को कुछ भी नहीं है, त्यागी भी माला फेर सकते हैं और रागी भी हाथ पर जाप दे सकते हैं, दोनों बातें हैं। अब फिर मुनि प्रतिक्रमण में एक शब्द आता है मणिवाह, इसका मतलब यह हुआ कि साधुओं के पास भी मणि हो सकते हैं, पर उसमें यह बताया कि अगर मैंने उन मणियों के प्रति भी मूर्छा भाव किया हो, परिग्रह भाव किया हो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तो वो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि साधु भी मालाएं फेर सकते हैं, और फिर इसका प्रमाण अगर आपको देखना हो तो फिर गजपंत सिद्ध क्षेत्र कभी आप जाएं दर्शन करने के लिए तो ऊपर वाला जो मंदिर है वहां पर आप मुनिराजों की प्रतिमाओं को देखिएगा, उनके हाथ में मालाएं हैं। और इधर मांगी तुंगी अगर जाएंगे तो ऊपर मांगी पर्वत के ऊपर देखिएगा तो वहां भी मुनियों के हाथ में मालाएं हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहना कि मुनि लोग माला नहीं फेर सकते, जब सब परिग्रह का त्याग कर दिया तो माला रख ली, अरे ये तो परिग्रह हो गया, हम नहीं मानेंगे इनको साधु, ये क्या है कि लड़कपन है, ऐसी बातें करना बिल्कुल ना समझेगी, जैसे बच्चे लोग करते ना, आउट नॉट आउट, इस टाइप का एक तमाशा बना करके रख लिया है मुनियों के स्वरूप को लेकर के। तो ऐसा नहीं है मालाओं का प्रतिक्रमण में, यदि मणि शब्द आया है तो क्यों आया है मणि शब्द, अगर साधु के पास मणि रत्न न हो तो फिर प्रतिक्रमण काय को करे वो मणि और रत्नों का, तो मालाएं साधु फेर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो यहां तक अपन ने स्वाध्याय किया था, चाहे तो अपन एक झलक देख लो, 15 काव्य हुए हैं। सबसे पहले काव्य में आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अभिनमन कर रहे हैं। कैसे हैं भगवान के चरण, तो कल्याण मंदिर, कल्याण के स्थान है, उदार यानी महान है, चरण आचरण से महान बनते हैं, जिनके पास आचरण नहीं है उनके चरण पूज्य नहीं होते, महान नहीं होते। फिर अवध भेदी, पापों को नष्ट करने वाले भगवान पार्श्वनाथ के चरण। भीता भयप्रदम, डरे हुओं को अभय प्रदान करने वाले। अनिंदित यानी प्रशंसनीय, वंदित। और संसार सागर निमज्जत शेष जंतु पोताय मानम, संसार सागर में डूबने वाले समस्त प्राणियों के लिए जहाज स्वरूप भगवान पार्श्वनाथ के अंग्री पद्मम चरण कमल को अभिनम्य नमस्कार करके। भगवान पार्श्वनाथ कैसे हैं? तो जिनेश्वरस्य, जिनेश्वर है। फिर अगले काव्य में दूसरे संस्तवन के वाला सुर गुरु हूं बृहस्पति कैसे थे भगवान? तो गरिमांबु राशि है, गरिमा के समुद्र थे। और कैसे थे? नष्ट करने की
Thank you.
सांपों के जो बंधन है वो ढीले पड़ जाते हैं और सांप वहां से अलग हो जाते हैं, क्योंकि मोर सांप को खा जाता है, सांप मोर से डरते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि आपके दर्शन मात्र से, आपके दर्शन मात्र से या फिर कोई ऐसी चर्चा की थी हमने, बाद के पास में है महाराष्ट्र में, तो वहां भगवान के दर्शन करने पर और भगवान की आराधना करने पर एक विशेष प्रकार की कोई पूजा है वहां। दो नाम सुने हमने पूजाओं के, एक तो समझ लो महामृत्युंजय विधान है संस्कृत भाषा में है, वो अगर वहां पार्श्वनाथ भगवान के सामने कोई कर ले तो श्रुति ऐसी चली आई है और वैसा कुछ परिणाम भी देखने में आता है कि जिनकी जन्म पत्रिका में कल्प सर्प योग का दूषण है अथवा अर्धकाल सर्प योग का दोष है उसका वही निवारण हो जाता है एक झटके में, एक ही बार में। तो दृष्ट मात्र भगवान के दर्शन मात्र से सैकड़ों उपद्रव दूर। काल सर्प का युग सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, ऐसे वैसे था तो जवाहरलाल नेहरू जी को भी, लेकिन कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कि किसी का समय क्रॉस हो जाता है, किसी का उस समय के भीतर का काल होता है, तो फिर वो सब वहां पर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन मात्र से चल जाते, वरना लोग नाग देवता की पूजा कराते हैं कि नाग देवता की पूजा कर लो तो फिर काल सर्प योग दूर हो जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन मात्र से, उनकी आराधना मात्र से सब काम हो जाता है। फिर इसके आगे कहते हैं कि हे भगवान, आप संसारी जीवों को तारते कैसे हो? वो ही संसार समुद्र को तैरते समय अपने हृदय के अंदर आपको बैठाल कर ले जाते हैं, तो नाव के अंदर बैठने वाला नाव को तारता है या नाव बैठने वाले को तारती है? यानी वो संसारी प्राणी तो नाव जैसे हो गए और फिर हृदय में आपको बैठाला हुआ है, तो बैठे हुए आप अंदर बैठे हुए उस पैसेंजर के समान हो गए, तो कौन किसको तार रहा है? उसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे कोई ऐसी वस्तु हो जिसमें हवा भर दी जाए, उसको पानी में डाल दो, पानी में तैरने लग जाती है। तैरने का कारण क्या है? अंदर की हवा। उसी प्रकार वो संसारी जीव संसार समुद्र से कैसे तैरते हैं? आप उनके हृदय में हैं इसलिए तैरते हैं, अगर आप न हो तो फिर डूब जाएंगे, इसलिए तारने वाले आप ही हो। इसके बाद कहते हैं कि जिस कामदेव के आगे हर प्रभृतियोपि महादेव आदि भी हत प्रभावा जाता है, प्रभाव शून्य हो गए, परास्त हो गए, उसको आपने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। जैसे बारिश जंगल की आग को तो बुझा देती है, लेकिन समुद्र का पानी भी बड़वा नल को नहीं बुझा सकता। समुद्र का पानी भी बड़वा नल को नहीं बुझा सकता। बरसात का पानी भी दावा नल को बुझा देता है, लेकिन समुद्र का पानी भी बड़वा नल को नहीं बुझा सकता। तो आप बड़वा नल के समान थे और बाकी प्राणी जो थे वो दावा नल के समान थे, कि जिनको पानी ने यानी कामदेव ने परास्त कर दिया और आपको काम नहीं जीत सका, काम आपसे परास्त हो गया। फिर कहते हैं कि इतने महान गरिमा वाले, आपको प्राप्त करने वाले वे जीव आपको हृदय में धारण कर लेते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने भारी आप जब हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो वो संसारी प्राणी हल्के हो जाते हैं। ये एक बड़ा चमत्कार है कि भारी चीज को अपने अंदर बैठा लो तो फिर अपने अपना भार भी बढ़ जाए, लेकिन कमाल ये है कि आपको जब हृदय में बैठा लेते तो वो लोग हल्के हो जाते हैं जिन्होंने आपको हृदय में विराजमान किया है, और लघु माने शीघ्र ही संसार सागर से पार पहुंच जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो आचार्य कहते हैं कि भाई इसमें बस आश्चर्यचकित होते रहो चलेगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि महापुरुषों का जो प्रभाव होता है वो कल्पना से परे होता है। हे भगवान, आपने सबसे पहले क्रोध का नाश किया, क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर नवम गुणस्थान में सबसे पहले कौन सी कषायें नष्ट होती है? क्रोध, फिर मान, फिर माया और फिर बादर लोभ और दसवें में सूक्ष्म लोभ। तो क्रम में सबसे पहले क्रोध को नष्ट किया। अब क्रोध नष्ट हो जाने के बाद फिर आपने बाकी कर्मों को नष्ट कैसे किया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिना क्रोध के किसी को नष्ट कैसे कर सकता है कोई? क्रोध आए तो किसी का नाश करे, क्रोध के बिना कैसे नाश कर दिया आपने बाकी कर्मों का? फिर उसका समाधान निकाला कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आग से ही कोई जले, कभी कभी बर्फ से भी जंगल के जंगल जल कर खाक हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब बहुत बर्फ गिरती है, हिमपात होता है, तब जंगलों के जंगल पूरे के पूरे जो हरियाली से भरे हुए थे सारे नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। फिर हे भगवान, योगी जन आपका ध्यान अपने हृदय कमल के भीतर वाले भाग में करते हैं। सही बात है कि जब निर्मल रुचि, स्वच्छ कांति वाले पवित्र कमलगट्टे की खोज करना हो, कमल बीज की, तो वो कमल के बाहर डंठल पर नहीं मिलने वाला, किंतु कमल के भीतर वाला जो पीला वाला भाग होता है ना कमल के अंदर, कर्णिका, उसके अंदर उसके बीज पाए जाते हैं। तो बीज को प्राप्त करने के लिए भीतर में ही जाना पड़ता है, उसी प्रकार आपका ध्यान लगाने के लिए अपने हृदय के अंदर डुबकी लगानी पड़ती है। फिर आचार्य कहते हैं कि आपके ध्यान से संसारी जीव क्षण मात्र में शरीर से मुक्त हो जाते हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार कच्ची धातु अग्नि के समागम से शुद्ध धातु सुवर्ण रूप बन जाती है। इसके आगे वाला काव्य था, अंत सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनोपि विवर्तिनो हि यद् विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। जिन संबोधन कई बार आया ना, अच्छा ये पार्श्वनाथ भगवान ने जीता था ना उपसर्ग को, तो इसलिए उपसर्ग विजय की अपेक्षा से भी भगवान जिन है, कर्मों को तो जीता ही था। यस्य अंतः, जिस शरीर के अंदर यानी हृदय में, तुम सदैव विभाव्य से, आप सदा ध्याए जाते हैं या आराधित होते हैं, उपासित होते हैं, भव्ये तदपि शरीरम कथम नाशे से, शंका कर रहे हैं आचार्य कुमुदचंद स्वामी। पार्श्वनाथ भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, भव्यजन जिस शरीर के भीतर हृदय में आपका ध्यान करते हैं, आप उसी शरीर को क्यों नष्ट करवा देते हो? यानी वो भव्यजन मोक्ष जाते हैं ना, तो मोक्ष जाते हैं तो शरीर छूट जाता है, शरीर का नाश हो जाता है, तो उसी शरीर को आप क्यों नष्ट करवाते हो जहां पर आपका ध्यान किया गया है? अथ, अब इसका जवाब देखिए आचार्य कुमुदचंद स्वामी स्वयं अपनी उत्प्रेक्षा से दे रहे हैं कि अथवा मेरा विचार ये है कि मध्य विवर्तिनो ही एतत् स्वरूपम, बोले जो मध्यवर्ती होते हैं उनका यही स्वरूप होता है। बोले जो मध्य में वर्तन करते हैं उनका यही स्वरूप होता है कि वो महानुभावः। एक तो क्या है कि मध्य में रहने वाले जो होते हैं वो सामान्य लोग नहीं होते, महानुभाव होते हैं, बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं। तो आप अगर शरीर के मध्य में हृदय में ध्याए गए हो तो आप सामान्य नहीं हैं, आप विशिष्ट हैं, महानुभाव हैं। तो महानुभावों का यही काम होता है कि विग्रहम प्रशमयन्ति यत्, कि वो विग्रह को शांत कर देते हैं। अब विग्रह शब्द के दो अर्थ हैं, एक विग्रह का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। तो जो बीच में आते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, वो लड़कों का आपस में विवाद हो या फिर पड़ोसी के साथ किसी का झगड़ा हो, तो वो बड़े बुजुर्ग लोग जो आते हैं वो आकर के प्रतिष्ठित लोग वहां बैठते हैं, पंचायत बैठती है और उसके बाद बड़े बड़े पंच लोग उनको शांत करते हैं कि भाई अच्छा तुम लड़ाई मत करो, ऐसा करो कि तुम ये कर लेना और तुम ये कर लेना, और फिर एक पंक्ति हो जाए, बोले तुम शनिवार को भोजन करा देना और तुम अगले शनिवार को करा देना, बोले। तो इस प्रकार वो गांव में ऐसी पद्धति होती है, और भोजन से सब तृप्त होते हैं, सब संसार में बाकी चीजों से तृप्त होते हो या ना होते हो, लेकिन खाना खाने के बाद व्यक्ति का गुस्सा नियम से ठंडा पड़ता है। कितना भी गुस्सा हो किसी को, बढ़िया भोजन करा दिया जाए ना तो उसका दिमाग ठंडा हो जाता है। तो फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, बड़े प्रभावशाली लोग, वो विग्रह को, झगड़े को समाप्त करते हैं। और यहां आध्यात्मिक जगत में झगड़ा क्या है? विग्रह। विग्रह का अर्थ शरीर होता है। अभी पढ़ा था आपने दूसरे अध्याय में तत्वार्थ के, सर्वार्थ सिद्धि में आया था विग्रह गति। नए शरीर को पाने के लिए जो जीव की गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। अथवा विग्रह का दूसरा अर्थ किया था कि मोड़े वाली गति,